एक तरह से भ्रम, किंतु भ्रम भी नहीं कहा जाएगा। महाप्रभु जी की समुद्र में यमुना का भ्रम और
चटक पर्वत के गोबर,
ये सब ये भ्रम है ना, क्या है
साक्षात,
इसलिए वो करेंगे। कभी तो एकदम साक्षात, कभी उनको ऐसे स्फूर्ति होती है, इसलिए उनका दर्शन का अभाव नहीं होता है, चाहे स्फूर्ति में देखें अथवा साक्षात। यदि साधक इन्हीं लीलाओं का चिंतन करे, कब करे, जबकि कृष्ण गोचारण जाते हैं उस समय बैठ करके जब हरिनाम करता है, तो इन गोपियों का स्मरण करे जैसा कि ये लोग करते हैं। प्रातः क्या है, जो दोहने वहनने मथनो पले पा प्रेम प्रेम खनाभिरुदितो ओ खन मार्जनादो गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो अश्रु कंठ्या धन्ना ब्रजश्रिय पुरु क्रमचित्त याना। अब बस वही चिंतन, कृष्ण गोचार में गए, गोपियां घर घर में बैठ करके क्या कर रही हैं, रसोई बना रही है, चिंतन क्या कर रही है, बस कृष्ण की चिंतन। जब जैसा समय तब समय के अनुसार में उनका चिंतन कर, झाड़ू लगा रही है, कृष्ण कहाँ होंगे, क्या कर रहे हैं, ये सब का चिंतन लीला के द्वारा। मान लगे ये प्रेम खंखना अभी उदित तो ओखन मार्जन, झूला माया अपने बच्चे को झूला रही है, उस समय में क्या चिंता कर रही है, झूला वहां पर झूल रहा है कहाँ, राधा कुंड पर जमुना के तीरे तीरे, और झूलन भी चल रहा है धीरे धीरे, झूला कौन रही है, बीच में श्याम श्यामा और राधा, ये ललिता विशाखा आस पास में, और बीच में झूला चल रहा है, ललिता जी झूला, बस वही चिंतन कर रहे हैं। और यहाँ पर हाथ कुछ समय के लिए रुक भी सकता है, झाड़ू चल भी रहा है, ये जागृत समाधि है इनकी, जीवित मने देख रहे हैं कि देख रही है, बोल रही है, चल रही है, किंतु है ही नहीं वहां, समाधि लगी है जो मुनियों को एकदम समाधि, उससे भी कोटि गुण समाधि ऊपर उनकी लग जाती है। साधक लोग उनका अनुसरण करेंगे, कौन सा साधक करेगा, कौन करेगा, साधारण लोग नहीं कर सकते, अनर्थग्रस्त जी, किंतु अनर्थ रहते हुए भी यदि लोभ हो गया, धीरे धीरे अनर्थ छोड़ते जाएंगे, लीला में निविष्ट होंगे, अनर्थ अपना पड़ा रहे, कोई भी जरूरत नहीं अनर्थ से पड़ा रहे वो अपना। अच्छा, इसलिए गोपियों से कृष्ण का कभी भी वियोग नहीं, चाहे स्फूर्ति में हो चाहे साक्षात हो, इसलिए पराशर जी ने ऐसा कहा है। कृष्ण यदि रास रसन योग्य गीते सहित यदि कृष्णचंद्र जी रास मंडली में उपस्थित होकर के गान करने लगे, देख रही हैं स्फूर्ति आई, और सचमुच में कृष्ण को उन्होंने देखा, और गोपियों ने दुगने स्वर से कीर्तन के माध्यम से और उसमें पद बना करके कर दिया क्या, साधु कृष्ण, और उसमें लेकर के कीर्तन का पद जोड़ दिया, कृष्ण के प्रति साधु भी हो गया और कीर्तन ताल स्वर ये सब
पद
चलता, ऐसे कृष्ण का जी अद्भुत, तो साथ ही साथ पद बना करके और साथ ही साथ में हमको भी इस प्रकार से साधु साधु हमको भी कर दिया, गोपियां साक्षात रूप में देखती हैं। और माथुरवर्ती पूरे स्त्रियां जो हैं अभी कहाँ पर हैं, रंगस्थली में है, युद्ध स्थली में, कंस के यहाँ पर, और वो कह रही हैं क्या, ब्रज स्त्रीय पुरुक्रम चित्त जाना जो कहा, वो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि ये युक्त युक्त है। इन गोपियों के अतिरिक्त ऐसा कोई भी दूसरा उदाहरण नहीं है जिसके लिए कह दें जो उर्व क्रम से जाना है, कोई भी ऐसा नहीं है। विशेष करके च एनम अनुरक्त धियो अश्रुकंठ धन्या ब्रज स्त्री उर्व क्रम चित्त जाना, ऐसा किसी के लिए संभव पर नहीं, ये उन्हीं गोपियों के लिए संभव। क्यों ऐसा युक्तिजुक्त? साधारण ब्रज स्त्री खाने से किसका बोध होता है? सारी ब्रज स्त्रियों का बोध होता है, किंतु ऐसा मत समझो। ये तो केवल जो कृष्ण की प्रियसी वर्ग हैं और अधिक से अधिक पुलिंदी कन्याओं को भी ले सकते हो, पुलिंदी कन्याएं उनको भी कुछ ले सकते हो और दूसरों के लिए नहीं। अथवा जब दिवा भाग में कृष्ण चले जाते हैं बंसी वादन करते हुए, एक वंशे न तो उदार वेणु स्वनयी कल्पद कल्पदा वेणु गीत सम्मोहिता इत्यादि, मैंने जब कृष्ण एक वन से दूसरे वन में अपने सखाओं के साथ में बलदेव जी के साथ में गोचारण करते हैं, बंसी वादन करते हुए जब चले जा रहे हैं, और उस समय में ये दिवा भाग में जब गोपियों से उनका मिलन नहीं होता, उस समय जो उनके साथ में गमन नहीं कर पाती हैं किसलिए, लोक लज्जा के कारण, तो वे जो ब्रज में स्त्रियां हैं वो सभी कैसी हैं? कोई बालिका है, कोई तरुणी है, कोई वयोवृद्धा है, कोई प्रौढ़ा है, वो सभी गोपियां धन्य हैं जो जाते समय में और आते समय कृष्ण को दर्शन करती है और नहीं होने कर प्रतीक्षा करती हैं जब कृष्ण कब आए, बस इसी की प्रतीक्षा में कृष्ण का ही चिंतन कर, और जिसको देखा है उसी का स्मरण कर, कैसे वो चारण जाते समय में कैसे हंस रहे, कैसे बोल रहे, कैसे देख रहे, उनकी चेष्टाएं कैसी हैं, रूप कितना मधुर है, बस इसी में दिन उनका बीत जाता। कब बीत गया उसका कारण यह है कि उनके अंदर में अनुराग है, अनुरक्ति है ना, अनुरक्ति होगी अनुराग से, और वह भी अनुराग बढ़ करके बढ़ते 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 महाभाव को में पहुंच गया, और वो महाभाव भी रूढ़ अधिरूढ़ इत्यादि में पहुंच गया। ये गोपियों के अतिरिक्त और किसी में नहीं है, इसलिए गोपियां इस रूप में अनुराग में भर करके कृष्ण के लिए चिंतन कर, अनुरक्त होकर के अश्रुकंठ, अरे दोहन कर रही है गाय का, तो आंख में आंसू की क्या जरूरत, कोई जरूरत है? इसलिए कहा यहां कि दोहने में उनका मन नहीं है, मन तो कहीं और है, इसलिए अश्रु हो रहा है आंख, वाणी गदगद हो रही है। दोहने वहनने जब आदि सस्यों के वो सब छिलके हटाने के लिए उठना, दधि मंथन स्वामी इत्यादि के लिए, परिवार वर्गों के लिए भोग की सामग्री जुटाने, सब्जी लाना उसको बनाना, रसोई के में और सब चीज़ों को घर में और सब चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब करने में, यहाँ तक ये गोप कुमारियाँ हैं ना, गोप कुमारियाँ घर का सभी काम करते हैं, गोप लोग बैठे रहते हैं, वो लोग कोई काम नहीं करेंगे, खेती में चले जाएंगे, किंतु वहाँ से लाना जाना है ना वो सब वही लाएंगे, गोपियाँ लाएंगे, वो हल चला लेंगे और सब काम कर लेंगे, किंतु बोझा ओझा भी ढो लेती हैं कभी कभी गोपियाँ, तो ये गोपियाँ उस कोटि की नहीं है, वो साधारण जो गरीब हैं उनके, किंतु इन गोपियों के लिए नहीं। कुमकुम चंदन इत्यादि का उपलेपन, हिंदोर माने झूला पर अपने बच्चों को बैठा देती हैं और कभी कभी खुद बैठती हैं, काम करते करते थक गई और कृष्ण की चिंता में विभोर हो गई, अवलंबने तो गिर पड़ेंगी, झूले को पकड़ लिया उस पर बैठ गई, पैर अपने आप
चल रहा है,
चलने लगा और हिले पर अपने आप हिलने लगे। उस समय में कृष्ण के हिंदू लीला की याद आई, कृष्ण को भी बैठा लिया, अपने झुला रहे हैं, राधा कृष्ण को झुला रहे हैं। बच्चों को रोदन से निवृत्ति कराने के लिए रोए नहीं, इसलिए थपथपा रही हैं। गोमय, गोमय मैंने गोबर लेकर के पानी मिला करके अपने घरों को लिपती हैं। लिपने के समय में, झाड़ू देने के समय में कृष्ण कथा का कीर्तन करती हैं परस्पर, या आप अकेले रहने पर अकेले ही भावना चिंतन में लग जाती हैं। आदि शब्द से क्या गृहालंगन लेपन, चित्रांकन, दीवालों पर चित्रांकन कर रही हैं। पहले ऐसे दीवाल होती थी मिट्टी की, उस पर चित्रांकन, हाथी घोड़े और सब गुड़िया गुड़िया और सब लेपन अल्पना जैसा चित्रांकन, पीसना, गेहूं चने इत्यादि पीसना, रंधन इत्यादि, गृह व्यापार, इस प्रकार की आवश्यक दैहिक ये सब जो कार्य हैं उसको करने में लगते हैं। तो उसमें ये क्यों कर रही हैं, यदि मन का कृष्ण ही नहीं है तो इसीलिए तो कर रही हैं, किसी को
समझने
कोई संदेह ना आने पाए। और ये सब दूसरे बात इसलिए भी करती हैं जिसमें हम लोगों को सुयोग आएगा कृष्ण लीला के चिंतन करने का, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। किंतु संकीर्तन के माध्यम से कर रही हैं। उद्धव जी जब गए हैं ब्रज में तो उनको पहले मिलन का वो दृश्य दिखलाया है, जब कृष्ण वृंदावन में है उस समय का। वो जब गए तो सवेरे देखा जी गोपियां नदि मंथन कर रही हैं और सभी गायन कर रही हैं चित्त विभोर होकर, उनका स्वर गायन के साथ में मिल रहा है। नदि मंथन से जो शब्द निकलता है मृदंग का पिछला भाग धिक धिक और इधर वाला तान, धिक किनको है जो ये लीलाओं का गायन करके कृष्ण में अपने चित्त को नहीं लगा रहे हैं, उनको धिक्कार है। इस तरह से गान कर रही हैं, बड़ी सुंदर सूक्ष्म वस्त्रों को धारण किए हैं, अंग प्रत्यंग का सौंदर्य उसमें से झांक रहा है, मणि के दीपों, मणि के स्तंभों पर
दीपक जल रहा है,
उसमें से धूप गुगुल इत्यादि का धीरे 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 सुगंध है, चारों तरफ में मतलब। और उस समय में बेली चमेली इत्यादि और कदम्ब इत्यादि के सुगंध से भरपूर प्रयोग हो रहा है। उस समय का दृश्य देखकर के कृष्ण गए नहीं, कृष्ण यहीं पर है, तो ये उनको स्मृति हुई ना, क्या हुआ, क्या हुआ, साक्षात हम लोग उसको स्मृति कर सकते हैं। वहां पर एक चौ है, गायन्ति चैनम अनुरक्त च एनम, च माने क्या, ये जितने भी काम हैं उसके द्वारा समझ लो कृष्ण में अनुरक्त हो करके। कैसे अनुरक्त, उरुक्रम, उरुक्रम माने होता है उरुक्रम जिनका है वो कृष्ण, और एक उरुक्रम का शब्द का अर्थ होगा उरु माने बहुत गंभीर रूप से, क्रम की कोई जरूरत नहीं, एक बार एक प्रेम में एकदम मग्न हो जाने का नाम उरुक्रम है। वो उसमें गोपी गीत में वेणु गीत में भी आया है, जमुना जी वेणु का स्वर सुन करके उनका यह भग्न हो गया, क्रम
मनोभव भग्न बेगा,
भग्न बेगा। तो यहाँ पर क्रम की कोई जरूरत नहीं, क्रम को लांग करके उसको कहते हैं गुरु। गुरु माने अत्यंत तीव्र उनके कृष्ण के प्रति उनकी भावना हो गई, इसको विशेषण मान लो
गुरु
गायति। गुरु माने या विशेष रूप से। इसलिए चकार का अर्थ से ये समझो, इसलिए अब इसको समझो इस प्रकार से। एक तो पहला होगा अभ्यास से उनका यह सब कर्म हो रहे हैं दैनिक कर्म, इसलिए साधक भी भगवान के भजन के अतिरिक्त आवेश होने के अतिरिक्त किसी काम में आवेश नहीं रहेगा, भगवान में आवेश रखेगा, किंतु पूर्व अभ्यास से उसका खाना पीना चलना फिरना सब काम हो जाएगा, उनके लिए बाधा नहीं होगा। ये अभी जिनको बाधा हो रही है समझो, जैसे बहुत अभी नीचे के स्तर में, इसके लिए दूसरा कोई दोषी नहीं है। दोषी कौन है? ऐसा नहीं जो सास ससुर घर के माता पिता भाई लोग हमको जो इसमें बाधा दे रहे हैं, ये कौन बाधा दे रहा है? स्वयं का भजन का नहीं होना, अभी जब भक्ति तो क्लेश को दूर करने वाली है तो ये सब को भी दूर कर देती, किंतु नहीं, अभी इनको दूर करना है, इसलिए वो सब चीज़ें आ गई। इसलिए दूसरे दूसरों का दोष मत देखना यदि कोई बाधा देता है। कभी किसी को ये अपना सुख और दुख का करता दूसरे को मत मान, कोई भी काम इसने अनिष्ट हमारा किया या अनिष्ट कर रहा है तो शत्रु भाव आ जाएगा, इसलिए अपने कर्म को ही या भगवान की कृपा को मान लो। तो कृष्ण को पश्यन्ति सस्मित मुखो, ये पहले मयाला में आया, इसको वो देख रही हैं। ये दर्शन कैसे? कभी कभी क्रीड़ा करते हुए ब्रज में के बीच में गोपियां दर्शन करती हैं कृष्ण को क्रीड़ा करती हुई। कृष्ण को साक्षात उपस्थित होने पर साक्षात उनका दर्शन होता है, या तो ब्रज से जा रहे हैं गोचारण के लिए आ रहे हैं, ब्रज में तरह तरह की लीलाएं करते हैं, उस समय इनको देख करके आविष्ट हो रही हैं। इसलिए कभी साक्षात कभी स्फूर्ति, कभी भी ऐसा समय नहीं होता जो कृष्ण का दर्शन नहीं करती हैं। कहते हैं कि यदि यहाँ पर गायन को भी प्रधान मानो, संकीर्तन के माध्यम से स्मरण होगा, जो गायन नहीं करेगा स्फूर्ति नहीं, इसलिए संकीर्तन कलयुग युग में प्रधान। इसलिए कहीं कहीं पर कह रहे हैं गुरुजनों की लज्जा से वहाँ पर खड़े हैं, ससुर हैं या देव जेठ है, उनसे लज्जा की आवश्यकता है तो गान नहीं कर सकती, तब उसके लिए करें पूर्व कम चित्त जाना, जब नहीं है तो क्या करती हैं? गायन इत्यादि करती हैं और इधर चित्त में भी आ रू, और यदि देखते हैं कि वो लोग हैं तो क्या करेंगे? पूर्व कम चित्त जाना, चित्त को कृष्ण में लगा करके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, अश्रु से कंठ अश्रु गिरने लगते हैं और कंठ भी उनका रुद्ध हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है एवं व्रतस्व प्रिय नाम कृत्या जातानुरागो, वहां पर जातानुरागो दुतचित्त उच्च हसत्तथो रोदति रौति गायन उन्मादयत लोक वाच्य। ये कौन है? भावावस्था में पहुंचे साधक क्या करेगा? आंख में आंसू आएंगे नहीं, किंतु तभी इसका गायन करेगा, पुनः पुनः इसी का साधन करेगा, तो भावावस्था में पहुंचकर ऐसी अप्रेमावस्था में पहुंचकर के ऐसी स्थिति हो। इस प्रकार से महावैचित्री चित्त चौर श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर के कृष्ण के अनुराग के सहित बुद्धि धी एकदम तीव्र गति से कृष्ण के चरणों में कृष्ण के लीला चिंतन में उनके रूप चिंतन में अपने आप आविष्ट हो गई है। अश्रुकंठा किस लिए कहा? अश्रुकंठ उनके कंठ गदगद हो जाते हैं, अश्रु आंखों में भर जाते हैं, क्यों? प्रेम से। वो प्रेम कैसे हुआ? उनकी चिंता करने से, कृष्ण लीला उनका चिंता करने से अपने आप हुआ जाता है। देखो एक प्रश्न कर रहे हैं, गोपियां का तो संसार में कोई आसक्ति तो है नहीं। ये जो मथनों पलेप इत्यादि जो कहा, झाड़ू देना, कूटना, पीसना, घर का जो काम है लिपना पुतना, राकेश में है, कृष्ण में अनुराग है उनका। तो कर्मों में तो उनकी प्रवृत्ति, यदि कृष्ण में अनुराग होता है इनके कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी, और इन कर्मों में प्रवृत्ति होगी तो कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है, तो इनका दोनों कैसे हो रहा है? इसी के लिए कारण। इसलिए यदि ये दूसरे दूसरे कामों में लिपने पुतने और घरों के कामों में लग जाती हैं, जैसे कि गृहस्थ लोग उनके घरों की स्त्रियां कूटने पीसने में सब लग जाती हैं, ऐसे गोपियां ही वैसा करने लगी, वैसा मत समझो। ये दो प्रकार से होता है, अभी बतलाया जोग माया के, वही इनका समस्त कार्यों का संपादन कर देती है, अथवा पूर्व के अभ्यास से इनका ऐसे हो जाता है। कृष्ण प्रेम में निमग्नता इनका, यदि और काम करने लगती हैं, यदि हम घर का काम करते हैं, जब हम मंदिर में ठाकुर की सेवा करते हैं और काम कर रहे हैं तो ये भक्ति कैसे हुई? नहीं, उन लोगों के लिए संभव है, महापुरुषों के लिए संभव है, इसलिए इस काम को अलग से नहीं देखते हैं, कृष्ण प्रीति के लिए यह करते हैं और उनकी भाव उद्दीपना होती है इन कार्यों में, उसी लिए करें अनुरक्त होकर। कैसे समझा जाए? उनको अनुराग है कृष्ण के प्रति, अनुरक्त हो रही हैं, आंखों में आंसू बरस रहे हैं ना, गले रुद्ध हो गए हैं, पुलकित रोमांचित हो गई है, इसे समझो। यदि पुलक हो, आंखों से आंसू हो, किंतु चित्त द्रवित नहीं है तो समझो जाइए बेकार का हो गया, दिखलाने के लिए। और चित्त द्रवित होता है, पुलक नहीं है तो भी ठीक है, और चित्त द्रव के साथ साथ में पुलक रोमांच और अष्ट सात्विक भावों, किंतु चित्त द्रवित नहीं हो रहा है, भाव नहीं है और ये दिखाई जा रहा है, तो ये अभ्यास के द्वारा ये सब होता है, वैसे की जरूरत नहीं, तो भक्ति सूख जाती है। अथवा और एक अर्थ बतला रहे हैं, गोपियों की ये सब जो काम है ये किस लिए कर रही? कृष्ण प्रीति के लिए। दोहन कार्य किस लिए कर रही हैं? दोहन कार्य से अपने घर के लिए दोहन गायों का दोहन कर रही हैं, तो कृष्ण की प्रीति कैसे होगी? घर अब तो कृष्ण किशोर हो गए हैं, तो वो मक्खन में चोरी करने तो आएंगे नहीं, तब कैसे होगा? इस कामों के द्वारा घर वालों को बुला करके हम रखें, हमारी प्रीति को सुना समझ सके, इसलिए कृष्ण के प्रीति के लिए ये करते हैं। उनका सब काम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कृष्ण प्रीति के लिए होता है, अब इसको इनडायरेक्ट रूप में समझते हैं। या कृष्ण आएंगे ना तो उनकी सास लेकर के उन्हीं चीजों को लेकर के कृष्ण के लिए यशोदा जी के घर में जाएगी, इसलिए भी हो सकता है। इसलिए ये साधकों के साधना के लिए बतला रहे हैं, जो ये सब जो कार्य हैं उनको कृष्ण की सेवा के निमित्त समझो और अनुराग के साथ में इन सब लीलाओं का चिंतन और विशेष करके कीर्तन के माध्यम से होना चाहिए। इसलिए कीर्तन हम नहीं करेंगे, हरिनाम नहीं करेंगे, भाव के साथ नहीं करेंगे तो ये चीज़ों का साधन नहीं होगा, तब इतना करके भी चित्त उसमें नहीं लगेगा। अपराकृत जो भाव हैं बिना साधन के नहीं होंगे, केवल सुनने से नहीं होगा, उसके लिए साधन करना पड़ेगा। केवल सुन लेंगे हो जाएगा ऐसा नहीं, साधन के द्वारा चित्त को वहां पर ले जाना पड़ेगा, तब चिन्ह में बातों को समझ सकेंगे। इसलिए कीर्तन के माध्यम से स्मरण होना चाहिए और तब ये सब भाव आएंगे, इसके द्वारा ये दिखलाए। अब ये बतलाएंगे फिर मिलन के लिए आएंगे, अब बीच में ले आए वियोग अवस्था, अब फिर मिलन में उनकी कैसी तीव्र गति होती है, एक श्लोक के द्वारा बतला करके फिर दूसरे प्रश्न पर आज यही कर बंचा कल
मथुरा की रमणीय ब्रज की रमणियों का महात्म गान कर रही है। कृष्ण के प्रति उनका कैसा अनुराग है, वे लेपने पोतने कूटने घर में झाड़ू देना बच्चों को पालन पोषण करना थपथपाना उनको झूले में झुलाना यहाँ तक कि फटकने के समय में सूप के द्वारा फटकने के समय में कोई भी देह और दैहिक रूप जो उनके क्रियाकलाप कार्य हैं व्यवहार हैं वो प्रेम में मग्न होकर और गला उनका रुद्ध हो जाता है और अश्रुपूर्ण नयनों से उनका स्मरण कर अपने मन रूपी रथ के ऊपर में चित्त पर उनको आरूढ़ कर देती हैं कृष्ण, इसलिए ब्रज की स्त्रियाँ धन्य हैं। और हम लोग कैसी दुर्भागा हैं कि अभी यहाँ आए हैं ये ब्रज में रहते हैं ये चले जाएंगे फिर दर्शन नहीं होंगे, यदि दर्शन भी हो अभी हो रहा है क्रोध के आवेश में शत्रुओं से लड़ रहे हैं, ये भी हम लोगों का एक दुर्भाग्य का परिचय है। और वहाँ पर कृष्ण का दर्शन किस रूप में, सदैव होकर के कटाक्षपात करते हुए वेणु बजाते हुए जा रहे हैं वहाँ पर उस रूप में दर्शन, और वहाँ उनकी वेणु कहाँ है, मुरली कहाँ है, मयूर मुकुट कहाँ है, वो ब्रज का भाव कहाँ है, इसलिए हम लोग अधन्य हैं गोपियाँ ही। फिर कह रहे हैं ये गोपियाँ यदि कृष्ण यहाँ रह भी गए यहाँ पर मथुरा में, सुनते हैं कि वो वसुदेव के लड़के हैं और देवकी के लड़के हैं, यदि यहाँ रह गए भी तो गोपियों जैसे स्वाच्छंद भाव से उनका दर्शन संभव नहीं, क्यों, यहाँ तो गायों को चराएंगे नहीं, वहाँ तो गायों को और सखाओं को लेकर के वन में विचरण करते हैं, आते और जाते समय में वैसे उसी का वर्णन करके क्षोभ कर रहे हैं। प्रातः ब्रजात ब्रजत आविशश्च सायं गोभीषमं कणेतो अस्य निशम्मवेन निर्गृत्य तूर्णम अबला पतिभूरि पुण्य पश्यन्ति सस्मित मुखं सदयावरूपम्। कृष्ण पश्यन्ति सस्मित मुखं मुस्कुराते हुए सदया कारुण्यपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं, हंस तो रहे हैं किंतु उसमें करुणा भरी हुई है और बंकिम दृष्टि से देख रहे हैं। किस समय, प्रातः ब्रजात ब्रजतः, ब्रजात ब्रज से निकल करके जा रहे हैं और शाम को आ रहे हैं, जब जा रहे हैं तो गोभी समम गायों के साथ में, गोभी समम कणे तो अश्व निशम्भवे गायों के साथ में, कणिया तो अश्व चरणों में नुपुर टुनटुनी बजी लगी वो बज रही और उनके मुख से जो वेणु की ध्वनि है ठीक ताल पर ताल, उनको सुन करके और इसको देख करके वो चेष्टा करके नहीं निकली। जिस समय में सुना जे कृष्ण आ रहे हैं उस समय तो चेष्टा करके निकली है, चलो चलो और जब वेणु की ध्वनि उनके कानों में गई तो वेणु की ध्वनि ने जोर करके उनको निकाल दिया, वो बेबस होकर के निकल गए। दोनों में आने में अंतर है। जब तक वेणु की ध्वनि नहीं सुनाई बड़ी तब तक कैसे आए? वो आ रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं। गैया हम्बारम कर रही हैं, अब हम्बा कर रही हैं, धूली उड़ने लग गई। उन्होंने अनुमान किया जब कृष्ण, तो वो घर से चलो 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 देखें, अरे अभी नहीं जाना है, जाने की जरूरत है, लोग क्या कहें। उस समय में विवेक है, धैर्य है, लज्जा है, तीनों रक्षा इनको कर रहे हैं। अब जहाँ वेणु एकदम निकट से सुनाई पड़ी, बस आत्महारा हो गई, निर्गत्य तूर्णम, एकदम तुरंत निकल पड़ी नहीं, निकाल लिया मनुष्य अबला। ये अपने आप निकल आई इसलिए अबला, उसमें शक्ति नहीं थी, ये रोक ले अपने को, धैर्य नहीं है, लज्जा नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए उनमें अब कोई शक्ति नहीं रह जाने के कारण वो अबला हो गई। उनको पकड़ करके जैसे कोई घसीट लाता है वैसे लेकर के चली आई। कौन? बंसी धन पथी, एकदम पथ में डाल दिया। कहाँ कौन है नहीं है इसकी अब चिंता नहीं रही। उसके लिए कह रही हैं ये मथुरा की नागरियाँ, वो भूरी पुण्या, वहाँ की ब्रज की जो रमणियाँ हैं, भूरी पुण्या, कोटि कोटि पुण्यों का पुंज, इनका कितना बड़ा महात्म है, कौन सा पुण्य इन लोगों ने किया जिसके वजह से इनको ये सुयोग मिल रहा है, हम भी यदि जानती तो ऐसा ही पुण्य का न जाने, साधारण पुण्य का तो ये काम नहीं। नारद जी को और ऋषि लोग हैं, सुखदेव गोस्वामी को भी ये देखने को अवसर नहीं मिला, बड़े बड़े ऋषि महर्षि पराशर इत्यादि भी हो गए, सांडिल इत्यादि हो, किसी को ये देखने का या सुनने का ऐसा सुयोग नहीं जो इनको है। और वो क्या करती हैं, कृष्ण जब गोचरण में जाते हैं तो पश्यंती निकल करके तुरंत और देखती क्या है, कृष्ण को सस्मित मंद मुस्कान के साथ सदैव अवलोकन, इनके तरफ में सदैव पूर्वक इनके तरफ में देख, इसी को हमारे सनातन गोस्वामी जी टीकाकार जी कह रहे हैं। अब इसी को इससे मिलान करेंगे, वक्त्रम बजेश सुतयो अनुबेनु जुष्टम जैवा निपीतम अनुरक्त कटाक्षम, ये सभी चीज़ें इसमें, सभी चीज़ें इसमें। इस प्रकार से श्री कृष्ण जब मथुरा में प्रवेश किया वृंदावन से, तब जब निकल रहे हैं वृंदावन से तो गोपियों के साथ में इनके आलाप हुए, बातचीत हुई, बहुत रोका, अन्य विनय किया, सत्याग्रह किया, रथ के चक्के में गिर गई, विलाप कर रही हैं, यशोदा मैया को कोस रही हैं, घोड़े की बागडोर पकड़ ली लगाम कोई कोई, और लज्जा इत्यादि से धैर्य से चुप हो, सब छोड़। कृष्ण ने किसी प्रकार से सांत्वना दी, मैं कल परसों में जरूर आ जाऊंगा। अब उसी को याद करके, सुना है उन लोगों ने, याद करके ये कर, अहो दुष्ट कंस का तो अब इन्होंने वध कर दिया, और ये यहाँ का इतना ऐश्वर्य है जिसकी कोई ठिकाना नहीं, हद नहीं, उग्रसेन को तो दिखावटी राज्य तिलक दिया है, उग्रसेन राजा नहीं, राजा कौन है, ये दोनों भैया ही हैं, और दोनों भैया में भी ये कृष्ण ही राजा है। अतुल ऐश्वर्य संपत्ति यहाँ की। इसलिए कृष्ण ने पीछे से उद्धव को भी अपने सोने वाले रथ पर बैठा करके दूध को भेजा था। जिसका रथ भी सोने का हो तो उसका कैसा ऐश्वर्य। इसलिए हो सकता है कि अब ये देवकी वसुदेव के पुत्र हैं असल में, वहाँ पर छिप कर थे कंस के प्रताप से, उसे बचने के लिए छिप कर वहाँ थे और गोपियों को ये सब सौभाग्य हुआ। अब हो सकता है कि कंस को मार करके विराट ऐश्वर्य जलाप करके अब यहीं पर बस जाएं, यहीं पर रह जाएं, इसलिए यहाँ पर भी हम लोगों के दर्शन होंगे। तो वो दूसरी सखी कह रही है दर्शन तो होंगे किंतु सिंह शावक का वन में दर्शन करना और पिंजड़े में दर्शन करना एक नहीं है। गुलाब के फूल को या कमल के फूल को उसके वृंत के साथ में दर्शन करना एक है और उसकी टहनी से उसको अलग करके देखो जब ही उसको तोड़ेगा वही वहीं से कुमलान आरम्भ कर जाएगा, सुगंध भी कम होने लग जाएगा और कुमलाते कुमलाते अंत में कुमला। तो अभी जिन लोगों ने देखा नहीं है वो कहेंगे बहुत सुंदर है ये फूल, और जिन लोगों ने देखा है कमल के वृंत में लगा हुआ जो कमल का फूल है और उस समय में जो खुला हुआ है सूर्य को देख करके उसमें उसकी अपूर्व शोभा। अब मिलान करेंगे तो देखेंगे ये, अब मिलान नहीं करेगा कोई नहीं जानता है तो उसके लिए तो वही सुंदर है। तो इसीलिए कह रहे हैं हम लोग इनको अभी यही सुंदर समझते हैं किंतु गोपियों के कृष्ण में गोपियों के दृष्टिपथ में आने वाले प्रातः काल में और शाम को जो कुछ और है वो अभी मादकता इनमें नहीं है। रूप जो उच्छलित होकर के खिल रहा है वो नहीं है इनमें। इसलिए हम लोग दर्शन तो करेंगे यहाँ पर भी किंतु वैसा कीर्तन करते हुए हम लोगों के लिए संभव है। सास ससुर और ये सब हमारे घेरे हुए, अच्छा तो कीर्तन भी संभव है। पति लोग नहीं रहेंगे और ससुर नहीं रहेंगी, सास नहीं, ननद नहीं रहेगी तो हम कीर्तन भी कर लेंगे। किंतु तथापि ब्रज सुंदरियों के समान प्रेम से भर करके उसकी मोहनी मूर्ति को जिस समय वो गायों को चराने के लिए जा रहे हैं सखाओं के साथ में वो सौभाग्य लाभ होगा, दूसरे कदापि नहीं वो सौभाग्य। इसी के अभिप्राय से कल रहे प्रातः प्रजात प्रजता अभिशस्त सायं। प्रातः प्रजात ब्रज से निकल करके ब्रजतः जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं गोचरण कहाँ जा रहे हैं, अब गोष्ठ में थे गोष्ठ से निकल करके वृंदावन में जा रहे हैं, वनों में जा रहे हैं, कुंजों की तरफ में जा रहे हैं, गिरिराज गोवर्धन में आ रहे हैं, साकरी खोर की तरफ में जा रहे हैं, राधा कुंड की तरफ में, कुसुम सरोवर की तरफ में ये जा रहे हैं। प्रभात के समय में घर से निकले, घर से निकल करके थोड़ी देर आगे गए थे, अब ग्राम की सीमा जहाँ पर समाप्त होने को है या उसके पहले ही बस बेनू अपने अधरों पर रख लिया और बड़ी सुंदर रूप में मधुर रूप में बेनू बजाने लगे। गोपालकों के सहित ब्रज से निकले, बेनूनाथ के समन से गोपियां एकदम खिंची हुई। पहले तो जानते हैं कि इस समय कृष्ण निकलेंगे तो उसके पहले ही पूछा गई और जो अभी तक काम में व्यस्त थी अब आएंगे अब आएंगे, जहाँ बेणुनाथ सुना अब तो चले जाएंगे, बस जो जिस रूप में थी उसी रूप में सब कामों को छोड़ करके निकाल लिया बंसी ध्वनि ने। अबला पथिपा पथि के वो अबला है जहाँ उनको खींच करके ला दो वहीं पर आ जाए, बल तो है नहीं, बल किस चीज का नहीं है, विवेक का बल होता है। विवेक माने क्या, विवेक माने क्या, बुद्धि के द्वारा हम विचार करेंगे यहाँ जाना अच्छा है कि नहीं है, तब बुद्धि का ये नहीं जाना अच्छा है, उससे मतलब क्या? पति को छोड़कर के उनके साथ में, उनके पास में दूसरे आदमी को देखने के लिए जरूरत क्या है? नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात है, यदि विवेक नहीं रहे तो लज्जा लोक लज्जा रहेगी। तीसरी बात रहेगी धैर्य रहेगा, नहीं जाएंगे। किंतु तीनों एक साथ में एकदम धराशायी हो गए। उस समय में जब जा रहे हैं, उस समय ये अबलाएं मुख धो करके उनको देख रहे हैं और बंसी की ध्वनि सुन रहे हैं। उसमें क्या देखा? सदयावलोकम, कृष्ण को देखा। कृष्ण को इस रूप में देखा जो सदय रूप में अवलोकन कर रहे हैं, उन लोगों के तरफ में ही अवलोकन कर रहे हैं, सदय होकर करुणापूर्ण दृष्टि से। ईषत हास्य युक्त मुखमंडल को दर्शन करते हैं। जो उन्होंने इस रूप को देखा उन्हीं की आंखें यथार्थ में सार्थक हैं, नहीं तो आंख नहीं रहनी ही अच्छी। इसी को कह रहे हैं वक्त्रम बजे शशिकयो अनुबेन जुष्टम जैवा निपीतम अनुरक्त तथा। यहाँ पर लिखा है पश्यंती सस्मु, और वहां पर लिखा है निपीतम, कुछ और बढ़ा दिया उस लोग, और भी गंभीर है। ये देख रही हैं और वो पी रही हैं, इसलिए घर के कामों को सब छोड़ छाड़ कर एकदम रास्ते पर निकल आए और वहां पर उनको इस रूप में देखते। यही जीवन का सार है, आंखों का यही फल है, साधन का भी यही फल है, समस्त साधनों का फल है। क्या? इस चिंतन को हृदय में या मस्तिष्क में ला उनका चिंतन कर। सब साधन मन को विषयों से हटा रहे हैं, किस लिए इसको लाने? हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, किस लिए? इन्हीं को लाने के। हम तीर्थों में जा रहे हैं, किस लिए? हृदय पवित्र होकर के यही भाव। वृंदावन में जाते हैं, किस लिए? वृंदावन में जरूर धाम की कृपा हो, उस भूमि की कृपा होगी, इसलिए जाते हैं। गिरिराज गोवर्धन में किस लिए जाते हैं? गिरिराज जी कृपा करें तो ये भाव हमारे हृदय में आए। इसलिए समस्त साधनों का फल, यदि साधन करते हुए भी, सब भजन करते हुए भी, भागवत इत्यादि पढ़ते हुए भी, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हुए भी, ये सब भावों का की झांकी हृदय में नहीं आए तो समझिए ये बेकार का ही साधन। मन को हम विषयों से निवृत्त किस लिए करें? क्या जरूरत है इसी सब? वो अबला होकर के भी ये करेंगे। हम लोग अभी सबला हैं। सबला माने क्या? ये तीनों चीजें हैं हमारी। इसलिए कृष्ण से वहाँ तो हैं, हम नहीं जा रहे हैं, या कृष्ण अभी कल या निकले थे रास्ते से, हम लोग वहाँ से निकल करके अपने महलों से नीचे आकर के रास्ते में उनसे नहीं मिल गई, और ये लोक लज्जा दर्ज तीनों छोड़ दिया। उसलिए अबला होकर के भी कैसी हैं? भूरि पुण्य, बहुत पुण्यमात्मा है, पुण्यवादी। यहाँ पुण्य तो काम ही नहीं आएगा। पुण्य से, पुण्य किसको कहते हैं? लोक उपकारी जो कार्य हैं उनको करने का नाम पुण्य। ऐसे ऐसे कोटि पुण्य से भी भक्ति नहीं होगी, बल्कि भक्ति उन्मुखी यदि सुकृति कोई हो तो उससे भक्ति होगी। संतों का संग मिलेगा, उसके द्वारा भक्ति होगी। ये तो हुआ सुकृति पुंज। सुकृति पुंज से भी ये भाव आएगा, नहीं होगा। ये करेंगे कैसी सुकृति, वो है पुण्य है जिसे गोपियों को ये भाव मिला, ये तस्व। इसलिए देखो तो भूरी पुण्य, ये कृष्ण की गमन भंगी कैसे है वो देख रहे हैं। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, अभी तो ताल ठोक करके लड़ते हुए रोष पूर्वक कसाईत नेत्रों से वो कौन दो हैं चरण मुष्टिक से लड़ रहे हैं, इसलिए उनको हम देख नहीं रहे। और उस समय कृष्ण की चलने की भंगी कैसे है देख रहे हैं, एक चल रहे हैं एक तरफ। और करुणा किस लिए, करुणा किस लिए, कुछ चीज को जो उनको अलभ्य है उसको पाने के लिए करुणा, देख करके लोभ हो जाए ना तो करुणा पूर्वक उसके ये मिलेगी चीज ना, हम कहाँ और ये वस्तु कहाँ, उसके लिए करुणा होती है। वे वेणुवादन करते हुए नटवर गति से लीला से नुपुर इत्यादि बजाते हुए पहलों में जो चल रहे हैं उस समय में उनका चलना ही नाट्य है, कुछ बोलना ही गान है। दस दिकों को मुखरित करते हुए चल रहे हैं, मुखरित माने दस दिशाओं में वो सब हैं, ऊपर नीचे इधर उधर सारद्रों को मुखरित करते हुए उनकी गमन भंगी तो देखो मानो वो देख रही हैं मालूम होता है, किंतु ये कह रहे हैं नहीं, वो जो देखती हैं वो कृष्ण की जो भंगी है वो यहाँ नहीं है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। बेनु का रौ और नुपुर का सिंचन, नुपुर का कल रौ कैसे निकवणाति गौरवे, उनके नुपुर कैसे बज रहे हैं, राजहंस जैसे कुण 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 कुण।